ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही इम्बैलेंस है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। हरे कृष्णा। तो हमारी दुनिया में आज का दिन क्या है, तारीख क्या है? 13 दिसंबर, मंगलवार, संध्या जागृति। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की प्राप्ति के रास्ते में बहुत सारे विक्षेप यानी कि ध्यान भटकना बहुत ही कॉमन है। इस दुनिया के अलग अलग वस्तुएं हमारे जीवन में हमारा ध्यान जो है वो खींचती रहती है। कौन से वस्तुएं हो आप बता सकते हैं वन बाय वन? कौन से वस्तुएं हमारी ध्यान भगवान से खींचते हैं हमेशा? हाँ, टेलीविज़न। हरी बोल। सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है वो टेलीविज़न। इतना मोहक है हाँ, कि जब जो शुरू होता है तो हमारा आँख जो है उसमें से कभी हिलता नहीं है, कभी भी नहीं हिलता है। फिर हमें भगवान की याद भी नहीं आती है, हाँ सब टेलीविज़न में जो चल रहा है उसकी याद आती है। और कौन सी वस्तु है जो हमारी मन को भगवान की ओर से खींच लेती है? हाँ, मोबाइल। हरे कृष्णा। अरे हम लोग एक बार लैटरिन जाना भूल जाएंगे लेकिन मोबाइल को नहीं भूल सकते। हाँ, इतना आजकल मोबाइल का पावर है कि आप टॉयलेट में भी जाएंगे तो भी मोबाइल बजता है और आप अस्वस्थ हो जाते हो, कब मैं उसको लूँगा। हाँ? खाना पीना भूल जाते हैं दिन में, ट्रेन में चलते उठते बैठते नींद के तकिया के पास मोबाइल चाहिए सब लोगों को, इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया है। एक्चुअली इसकी आवश्यकता नहीं थी दुनिया में लेकिन आवश्यकता निर्माण की गई है उसको, और अब ऐसा आवश्यकता कर दी गई है कि उसके बिना जीना मुश्किल हो गया। हाँ, अब एक दिन मोबाइल नहीं रहेगा तो पता है लगता है कुछ जीवन का एक हिस्सा गिर गया किधर, तुम्हें रास्ते में ढूंढ रहे किधर गया वो। और कौन सा ऐसा कार्य है जो हमको भगवान से अलग कर देता है? यस, पैसा नहीं करता है क्या? पैसा, हाँ पैसा अस्थि, ऐसा कहा गया है मनी इज हनी एंड स्वीटर देन हनी ऑल्सो। जो मधु होता है ना, मध वो पैसा वैसा मीठा होता है, पैसा उससे भी मीठा होता है। उसके लिए आदमी क्या नहीं करता है? हाँ, उसके लिए आदमी सब कुछ छोड़ने को तैयार है, रिश्ते नाते प्रेम उसके लिए सब कुछ, खून खराबा बलात्कार सब करने को तैयार है। एनीथिंग फॉर मनी, कोई सुपारी देगा खून करो तो भी तैयार है, पैसा चाहिए बस। आप बीमार पड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे पैसा बनाएंगे। हाँ, आप मरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैयत का सामान बेच के पैसा बनाएंगे। ऐसा है लोगों का मन आजकल। और ये पैसा जो जब तक हमारे बीच में प्रधान करके खड़ा है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और कोई ऐसी वस्तु है? खेल, जहाँ पर नीचे खेल रहे ना, जनसंख्या क्यों कम है आज इधर इस तरफ? क्योंकि लोग गुल्ली डंडा, क्या बोलते हैं उसको, गुल्ली डंडा नहीं खेल रहे, बैट बॉल खेल रहे हैं नीचे। और कुंती देवी कहती है भागवत में, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभिर ए धमा पदमो पुमान। वो कहते हैं कि जिसका उच्च जन्म होता है, बहुत अच्छे कुल में ब्राह्मण के जन्म में राजा का पुत्र है या बड़े धनी आदमी का पुत्र है ना, कहते ना कि अरे सिंपल आदमी नहीं है ये, अंबानी का बेटा है, मनमोहन सिंह का पोता है, स्कूल में होता है ना ऐसे, उसी से आदमी को गर्व होता है कि मैं अमुक इसका बेटा हूँ, सचिन तेंदुलकर का बेटा हूँ। कोई होगा ना लड़का उसका कॉलेज में जाता होगा स्कूल में, जन्म जो इसका बड़ा है वो गर्व होता है उसको, ऐश्वर्य यानी कि बहुत धन संपत्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है, बहुत सारा कॉन्टैक्ट है, बहुत सारे लोग हैं उसके पीछे, जन समुदाय उसके अनुयायी है, हाँ बहुत फॉलोअर्स है उसके, जन्म ऐश्वर्य और श्रुति यानी कि बहुत जिसके पास नॉलेज है, दिखने में कुरूप है लेकिन बहुत विद्या उसको पता है, ये भी पता है वो भी पता है, जो पूछेगा उसको मालूम है, कोई भी प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर उसके पास है, मतलब फल कौन सा अच्छा होता है तो उसको मालूम है, हवाई जहाज में कैसे जाना चाहिए तो उसको पता है, वीज़ा कैसे मिलाना है वो मालूम है उसको, जड़ी बूटी कहाँ से प्राप्त करें वो भी पता है उसको, हिमालय में कैसे जाना है वो पता है उसको, सब पता है। नॉलेज जिसका होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और श्रुति यानी और श्री, श्री यानी सौंदर्य, धन संपत्ति और सौंदर्य। कुंती देवी कहते हैं जिनके पास में ऊंचा जन्म है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत ज्ञान है, बहुत सुंदरता है, वो कहते हैं भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। उसके लिए त्वाम अकिंचन गोचरम, लाइट चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कान है जब तक मुंह है चलता रहेगा। तो त्वाम अकिंचन गोचरम मतलब क्या कि जब तक व्यक्ति गरीब नहीं बनता है, गरीब मतलब धन से नहीं, हृदय से, जन्म पर गर्व नहीं करता है, ऐश्वर्य पर गर्व नहीं करता है, सुंदरता पर गर्व नहीं करता है और ज्ञान पर भी गर्व नहीं करता है, वो आपका भक्त बन सकता है, ऐसे कुंती देवी भगवान को बता रही है। इसका मतलब हमारा मन अगर हमारे जीवन में इन वस्तुओं में लगा हुआ है तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए कोई फेमस है, फिल्म स्टार है, वो भगवान का भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि वो अपने सुंदरता पर और अपने यश पर और अपने कीर्ति पर इतना फेमस, इतना उनको गर्व है कि भगवान की भक्ति वहाँ पर टिक नहीं सकती। बोलते ना कि पत्थर में अगर आप बीज डालोगे और जल दोगे तो पत्थर पर झाड़ नहीं आ सकता है, उसके लिए ज़मीन चाहिए एकदम मुलायम, पत्थर सख्त होता है और सख्त पत्थर पर कोई पेड़ नहीं आता है, तो वैसी भूमि चाहिए, नम्रता की भूमि पर भक्ति का पेड़ जो है बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। तो किस तरह से आदमी इस जीवन में भगवान को छोड़कर अन्य वस्तु में फंस जाता है उसकी मैं एक सुंदर कहानी आपको बताने वाला हूँ। तो एक साधु महाराज थे, नारद मुनि, जब जानते हैं ना उनको, नारद मुनि बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि जन्म जन्मांतर तक, हाँ युग युग से युग तक, अलग अलग युगों में हम लोग तो आते जाते रहते हैं लेकिन वो वैसे ही हैं जैसे शुरू से हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, अलग अलग युगों में अलग अलग कल्पों में अलग अलग लाखों सालों में आते रहते हैं बार 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 बार, और कभी सर्प का उद्धार करते हैं, कभी शिकारी का उद्धार करते हैं, कभी क्षत्रिय बालक का उद्धार करते हैं, कभी वाल्मीकि का उद्धार करते हैं, कोड़ी का उद्धार करते हैं, कभी किसी का उद्धार करते हैं, कभी किसी का उद्धार करते, कभी राजा के पुत्र का, प्रहलाद का उद्धार करते हैं, कभी ध्रुव जी का उद्धार करते हैं, हाँ किसका 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 विविधतापूर्ण लोगों का उन्होंने उद्धार किया है, अलग अलग लोगों का, शूद्र से लेकर ब्राह्मण से लेकर क्षत्रिय से लेकर सबका उद्धार किया उन्होंने। तो ऐसे ही वो एक व्यक्ति के घर पे आते हैं, इसका नाम है कैलाश, और वो कैलाश जो है वो पारिवारिक आदमी, हमारे जैसा पति पत्नी बच्चे पोते सब है उसके पास, घर है, बहुत मेहनत कर रहा है। नारद मुनि उसको मिलते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है बहुत कीमती है, नारद मुनि बताते हैं उसको बहुत कीमती है, ये जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करो, क्योंकि तो कुत्ता बिल्ली सांप मछली पंछी पेड़ इस जीवन में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भले वो आदमी कितना अनपढ़ हो, दिखने में खराब हो, काला हो, गोरा हो, अच्छे कुल में जन्म नहीं हो गया हो, अच्छे देश में नहीं हो, कुछ भी हो, मनुष्य है तो वो भगवान की भक्ति कर सकता है। और कुत्ता कितने भी इंग्लैंड की रानी के घर में अगर पैदा हो गया हो फिर भी वो कुत्ता है, उसको भक्ति नहीं कर सकते। हाँ इंग्लैंड की रानी जो है उसके पास भी कुत्ते होंगे ना, कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगे, खरगोश होगा, क्या क्या प्राणी होंगे उसके पास रखे होंगे पालतू, लेकिन रानी के घर में जन्म होने के बाद भी कुत्ता कुत्ता ही होता है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो नारद मुनि समझा रहे हैं उसको कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है। तो फिर वो कैलाश क्या बोलता है उनको, कैलाश बोलता है कि देखो ऐसा है नारद मुनि जी, अभी मेरा बहुत काम बाकी है, अभी ये घर बनाना है, आधा ही बन के हो गया है, उसको पूरा करना है, हाँ, फिर वो बच्चे जो है ना, वो बहुत ही ऐसे जिम्मेदार नहीं है, उनको कुछ समझता नहीं कैसे संभालने का है, मेरे को उनको सिखाने का भी है, इतना बड़ा घर में जो बनाऊंगा उसको संभालना कैसे है, उसे देखभाल कैसे करनी है। तो नारद मुनि कहते हैं देखो कोशिश करो, अभी टाइम बहुत कम है। फिर भी वो सुनते नहीं, बोलते दोबारा आते हैं कभी बहुत साल के बाद में, तभी ये बुढ़ा हो जाता है आदमी। और नारद मुनि कहते हैं अभी तो करो, अभी तो जीवन समाप्त होने का समय आ गया है। बोला नहीं नारद मुनि, अभी भी थोड़ा काम बाकी है, घर तो बन गया है लेकिन अभी तक हमारे बच्चे बहुत ऐसे गैर जिम्मेदार हैं, उस जिम्मेदारी से अपना घर नहीं संभाल रहे, मेरे को ट्रेनिंग देना है उनको, इतना बड़ा प्रॉपर्टी बनाया है उसको संभालना चाहिए ना उसको। तो फिर नारद मुनि चले जाते हैं और फिर कुछ साल बाद आते हैं, उसी घर में आते हैं जो उसने कैलाश ने बनाया था। पूछते कैलाश किधर है, तो उसके बच्चे बोलते हैं कि चले गए वो, कैलाश का अंत हो गया, पिताजी गुजर गए। तो कैलाश को मृत्यु का समाचार सुन के नारद मुनि को दुख होता है, अरे मैंने कितना समझाया उसको, भगवान का नाम लो, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे सोचकर वो वापस जा रहे हैं, दोबारा लौट के जा रहे हैं, तो एक कुत्ता भौंकते हुए साथ सामने आता है उनके, जोर जोर से भौंकता है। और अचानक कुत्ता बोलने लगता है, नारद मुनि मैं हूँ कैलाश। बोले अरे कुत्ते बन गए तुम, क्या करूँ अभी, ये जो मेरे बच्चे हैं ना वो घर की रखवाली नहीं करते बराबर से, दरवाजा ताला लगा देते, कभी अंदर का छोड़ देते हैं, बाहर का छोड़ देते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं, तो चोर वगैरह आ गए तो, इसलिए मैं कुत्ता बनकर आया हूँ रखवाली करने के लिए उसकी। इनको बिल्कुल अकल नहीं है, कैसे रहते हैं वो, एकदम गैर जिम्मेदार है मेरे बच्चे लोग। फिर अभी तो करो भगवान की भक्ति, अभी तो कुत्ते बन गए तुम, कोई बात नहीं, मैं उनको अच्छी तरह घर की देखभाल करूँगा अच्छी तरह से, फिर भगवान की भक्ति करूँगा। फिर नारद में चले जाते हैं, कुछ देर बाद में आते हैं तो पूछते हैं वो कुत्ता कहाँ है, क्योंकि नारद मुनि बहुत दयालु हैं, वो कैलाश को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो घर के लोग कहते हैं कुत्ता जो है ना वो मर गया, रोड के एक्सीडेंट में मर गया। तो नारद मुनि को बहुत दुख होता है, अरे मनुष्य था इतना, फिर कुत्ता बन गया, फिर भगवान के नाम की याद दिलाने के लिए मैं आया, फिर भी वो वही कह रहा था। तो लौट रहे थे वापस, तो ऐसा उनका आवाज आता है, तो पीछे मुड़ कहते एक सांप आ रहा है। नारद मुनि जी मैं हूँ कैलाश। अरे बोले कुत्ते की जिंदगी में मैं वो काम पूरा नहीं कर पाया, अभी सांप के रूप में इनका प्रॉपर्टी की रक्षा कर रहा हूँ मैं। तो नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है कि और निचले और निचले और निचले योनि में जाएगा ये, हाँ घर गृहस्थी के लालच में आदमी को बार बार आना पड़ता है। और ये मत समझना कि अगली बार मनुष्य बनकर ही आएंगे, प्लीज आप सोच लीजिए, ये सब कहानी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने हाथ में मनुष्य का जन्म है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई जवान है, कोई बुढ़ा है, लेकिन मनुष्य है, अभी भी वाचा है, अभी भी भगवान के नाम समझने की बुद्धि है, और हम उनको नाम ले सकते हैं और वो उच्चारण करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये सब सच है मनुष्य के जीवन में। लेकिन अभी साइन गवा देंगे तो आगे क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो नारद मुनि को बहुत बुरा लगता है कि ये सांप बन गया, अभी पता नहीं आगे कौन बनेगा, चाहे चिपकली बनेगा, हाँ चाहे कॉकरोच बनेगा, चाहे क्या बनेगा, हू नोज। तो क्या करते हैं नारद मुनि, बड़ी दया से दोबारा घर में चले जाते और घर के सब बच्चों को बीवी को बोलते हैं, अरे तुम्हारे आंगन में एक भयंकर सांप है, वो कभी भी आके बच्चों को काट सकता है, उसका देखभाल का उसका मतलब इलाज करो। तो घर के सब लोग डंडा वंडा लेके पत्थर उत्थर लेके आते हैं और सांप को मारने लगते हैं। तो भी वो सांप जोर जोर से नारद मुनि चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। नारद मुनि भाग भाग के आते हैं और सब लोग बोलते हैं बस बस मत मारो मत मारो। और तुरंत वो सांप जो है नारद मुनि के चरणों में बैठता है, भगवान के धाम का धारण, भगवान के नाम का ध्यान करता है और उसके जीवन का उद्धार होता है। तो इसमें लॉस किसका हुआ, टाइम किसका वेस्ट हो गया, कैलाश को मनुष्य जन्म में ही भगवान की प्राप्ति होने का मौका था, अभी उसको सांप के जन्म से दोबारा मनुष्य बनने तक वेट करना पड़ेगा, कि सांप के जन्म से फिर वो जो उत्क्रांति होती है ना, सांप से फिर पंछी, पंछी से फिर जानवर, जानवर से फिर इंसान, फिर मनुष्य के जीवन में 84 लाख योनि के बाद में फिर मौका मिलता है ना। हम लोग जो मनुष्य बने हुए हैं सब वो ना मेरे को राउंड होता ना, यात्रा में होता ना गोल मेरे को राउंड, पता है ना आपको, मेरे को राउंड में पूरा चक्र काटने के बाद दोबारा आदमी ऊपर आता है। हाँ, तुम जब ऊपर हो सबसे और नीचे आने लगते हो तो ऊपर वापस आना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरा चक्र काटना पड़ेगा, पूरा चक्र काट के फिर दोबारा ऊपर आएगा। तो बार बार ऊपर जाना है, नहीं नहीं अभी पूरा घूम के जाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना, वन वे ट्रैफिक है इधर, पूरा घूम के ही जाना पड़ेगा आपको। तो वैसे कितना टाइम लगा होगा उसको। तो ये कैलाश की कहानी जो है वो कैलाश की कहानी नहीं है, वो डॉक्टर शानबाग और गोपीकांत और सब लोगों की कहानी है, ये हम सबकी कहानी है। क्योंकि हम सबको जब भी हमको संदेश मिलता है कि भगवान की भक्ति करो तो हम क्या बोलते हैं, अरे अभी तो बच्चे छोटे हैं, वो अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी तो लोन लिया है, अभी तो पहला इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरा है, अभी तो बच्चे अभी अभी तो बोल भी नहीं रहे, वो अभी गोद में खिला रहे उनको, अभी किधर टाइम है, दिन रात सोने को भी टाइम नहीं मिलता। आप बोल रहे भक्ति करो, कहाँ टाइम मिलता है। छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं अभी अभी तो सोने को भी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी अच्छी तरह सो रहे हैं, लेकिन अभी बच्चे को पढ़ाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको शादी कर देनी है, इसको वो करना है, इसको वो करना है, उनसे इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं करना है। अभी तो एक गाड़ी भी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी दूर जाना पड़ता है तो गाड़ी चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं, बॉम्बे से चर्चगेट जाना पड़ता है, चर्चगेट से बॉम्बे आना पड़ता है, इतना दूर दूर जाना पड़ता है। हम सब लोग ऐसे बहाने बना लेते बैठे, और हमारा ध्यान जो है अलग अलग वस्तुओं में फंसा रहता है, जवानी में भोग की तरफ, थोड़ा बूढ़ा होने के बाद में पैसे की तरफ, फिर इसकी तरफ, फिर उसकी तरफ, शरीर की सुंदरता की तरफ, कितना समय हम खर्च करते हैं। कोई अब सुंदर स्त्री होगी उसको बोलेंगे भगवान का भजन करो, तो बोले टाइम नहीं है, लेकिन एक चेहरे का मेकअप करने लिए 2 घंटा स्पेंड खर्च कर सकते हो, 2 घंटा मेकअप मन के पास में जाके ब्यूटी पार्लर में 2 घंटा मेकअप कर सकते हैं एक शादी में जाने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे एक माला जप करो 7 मिनट के लिए, तो बोले टाइम नहीं मिलता उनको, क्योंकि उनके जीवन में जो प्रधान वस्तु है वो अलग है। जब तक प्रधान वस्तु भगवान नहीं बन जाती है तब तक हमारे जीवन में बाकी सब कुछ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी के लिए फिल्म स्टार के लिए उसका बॉडी इम्पॉर्टेंट है, उसका चेहरा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाल इम्पॉर्टेंट है। कोई बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ से वहाँ हवाई जहाज से जाएगा, उधर से ट्रेन से जाएगा, उधर से गाड़ी से जाएगा, और हर जगह बिजनेस करने का प्रयास करेगा। कोई LIC का एजेंट रहेगा तो हर जगह जाके वो कोई पॉलिसी को लेता है क्या, वो कोशिश करते रहेगा। हाँ, शादी में जाएगा तो पॉलिसी बेचेगा, एंगेजमेंट जाएगा किधर, फंक्शन में जाएगा किधर, बिल्डिंग के मीटिंग में जाएगा, एनुअल मीटिंग में उधर भी बोलेगा पॉलिसी ले लो, एक अच्छा पॉलिसी आया है, सबको SMS भेजेगा पॉलिसी के लिए, क्योंकि उसके जीवन में प्रधानता वो है कि उसको वही करना है। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। जो भी आप कोशिश कर रहे हो, जहाँ जहाँ दिल लगा रहे हो, जहाँ जहाँ टाइम दे रहे हो, जहाँ जहाँ मेहनत कर रहे हो, जिस जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, वो सब वस्तु एक दिन समाप्त होने वाली है। और यही समाप्त हो, ऐसा नहीं कि हमारे साथ आगे जाकर अगले टाइम पर समाप्त हो गया, ऐसा भी नहीं है। इस जीवन में, इसी जीवन के अंत के पहले ही, कभी कभी इस जीवन के पहले ही खंत, जीवन समाप्त होने के पहले ही वो वस्तु समाप्त हो जाती है। हमने देखा है कि नहीं, 3-3 पीढ़ी के अमीर लोग जो होते हैं, वो 4थी पीढ़ी जो है वो कुछ ही समय के बाद में सब बिजनेस खो बैठते हैं, एकदम गरीब बन जाते हैं। कितनी कहानी हमने बचपन में सुनी है। पीढ़ी जात जो अमीर होते हैं वो इस जन्म में एकदम फकीर बन जाते हैं, सब प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। अभी भी इतने ऐसे फिल्म स्टार लोग रहते हैं, चावल में रहते हैं, उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है। इसी जिंदगी के हैं, इसी जीवन में जवानी में वो फिल्म स्टार थे, फेमस थे बहुत। एक थे भगवान, मालूम है आपको भगवान, डांस करते थे ना, भोली सुलग दिल के फोटे नाचते थे ना वो, ऐसे ही एकदम कंगाल होकर लोअर पटेल की चाल में मर गए। और शमशाद बेगम नाम की बहुत फेमस गायिका है, बहुत हमारे बचपन से भी, हमारे बचपन मतलब हमारे पिताजी के बचपन की बहुत गायिका थी वो, 1920-25 वो टाइम की। आज कहते हैं कि वो कैंसर से बीमार है, उसके लिए दवाई के लिए पैसा नहीं है उसके पास, मतलब एक ही जीवन है वो, एक ही जीवन में कुछ समय के लिए बहुत यश मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, सब जगह नाम है आपका, आपका रिकॉर्ड सुनने के लिए, आपका साइन लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं। और उसी जीवन में एक ऐसा समय आता है जिसमें आपको कोई बोलता है मराठी में कुत्ता भी नहीं पूछता है, आप बीमार पड़ रहे हैं, हाँ वो क्या गवर्नमेंट कहती है कि उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे खाने को तो पहला पैसा, पहला खाने को तो उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या करेगी वो, अभी दवाई चाहिए कैंसर होने के बाद में, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या बेचेगा वो और उसके पैसा बनाएगा उससे दवाई लाने के लिए, नहीं कर सकता है। ऐसे कितने उदाहरण लूंगा आपको मैं, कितने उदाहरण जो इसी जीवन में अमीर, प्रसिद्ध, फेमस, सुंदर कलाकार ऐसे लोग थे, लेकिन इसी जीवन में बर्बाद होते हुए हमने उनको देखा है। तो ये मत समझना कि वो हम नहीं होंगे, हम तो सामान्य आदमी हैं, ना हम फेमस बनेंगे ना हम बर्बाद होंगे, हम वैसे ही रहेंगे शुरू से एंड तक, ऐसा नहीं होता है। काल जो है ना, काल वो जैसे आगे बढ़ता है वैसे एक एक वस्तु आपसे छीन लेता है। देखो पहले ऐसी जगह पर हम लोग आधा घंटा बैठ सकते थे, पौना घंटा, अभी उम्र बढ़ेगी तो 10 मिनट में उठना पड़ता है, पैर दुखने लगता है, पेट दुखने लगती है, हाँ फिर ब्लड चेकअप करेंगे तो डायबिटीज आएगा, शुगर है, शुगर डायबिटीज आएगा, कोलेस्ट्रॉल बड़ा मिलेगा आपको और कुछ रिपोर्ट ख़राब आएगा। हर 6 महीने में आप एक रिपोर्ट करोगे तो एक एक खराबी आएगी आपके अंदर, 35-40 साल होने के बाद में शुरू हो जाएगा धीरे से, अरे एक मूछ का बाल सफ़ेद हो गया, फिर बोले मूछ रखने का नहीं अभी क्योंकि सब सफ़ेद हो गया, फिर बाल का सफ़ेद, फिर बोला ये सब कलर लगा दो उसको, कहाँ कहाँ तक छुपाओगे काल का परिणाम जो आपके ऊपर हो रहा है वो, कहाँ कहाँ तक आप छुपाओगे। फिर बोले कि गले की चमड़ी लटक रही है अभी 50 साल के बाद में, कितना मेकअप करोगे, क्या क्या करोगे उसको, कितना मसाज करोगे, क्या नहीं क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। अरे चेहरे में लाइन आ रही है अभी, वो चमड़ी लटक रही है अभी, पहला कितना कड़क थी अभी जब लटक रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कितना आप कोशिश करोगे तो कितना। आजकल लोग अमेरिका में बॉल्ड करते हैं हेड को, क्यों, तो सफ़ेद बाल दिखाई नहीं पड़ेगा, सफ़ेद है काला है पता ही नहीं चलेगा, शेव ऑफ कम्प्लीटली। लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ तक समय को रोक पाएंगे, और समय के बाद जो परिणाम होता है, हाँ तो महंगाई बढ़ रही है समय के साथ साथ, समय के साथ वस्तु हमको नहीं मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा था अभी पेट्रोल भी नहीं मिलता है, पृथ्वी के पास पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, समुद्र के अंदर ख़त्म होते जा रहा है, अच्छे खाने को वस्तु नहीं मिल रही है, पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, हवा शुद्ध नहीं मिल रही है, समय जैसा आगे जा रहा है वैसे ये भी नहीं मिलने वाला है, और अभी मिलने भी नहीं रहा है। हमारे बचपन में हमने कभी भी बोतल का पानी क्या होता है और पानी खरीदना पड़ता है ये सुना नहीं था हमने बचपन में, कभी पानी भी खरीद के मिलता है पता नहीं था हमको, सब जगह शुद्ध पानी फ्री मिलता था। आज आप स्टेशन पर पानी नहीं पी सकते, पता नहीं टाइफाइड होगा आपको, क्या होगा, हु नोज। एक ज़माना आएगा कि हर एक व्यक्ति को अगर जीवन में जीना है, मुंबई में जीना है, दिल्ली में जीना है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के पीठ पर मास्क लगा कर चलना पड़ेगा आपको, जैसे आप शुद्ध पानी का बॉटल लेके खरीद के ट्रेन में यात्रा करते हो ना, पता नहीं वहाँ उस देश में कैसा पानी मिलेगा, तो यहाँ से पानी लेके जा रहे हैं, बॉक्स लेके जा रहे हैं और पीते रहे हो। कुछ लोग फॉरेन से भी आते हैं तो भी बॉक्स बॉक्स लेके घूमते हैं एंड तक, वैसे अभी पानी बाद में हवा, भाई जहाँ जाओगे तो अपने हवा का स्टॉक लेके जाओगे ऑक्सीजन का, क्योंकि समय के साथ में अच्छी हवा भी ख़त्म होती जा रही है, साथ साथ आपका जो जवानी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी, आपका पैसा भी ख़त्म होता जाएगा। आज नौकरी है तो कल आपको रिटायर होना पड़ेगा, आप काम नहीं कर सकते बाद में, उसकी बीमार हो जाएंगे, फिर जिन बच्चों की देखभाल आपने की वो आपकी देखभाल नहीं करेंगे, हाँ ये सब सत्य है, ध्यान रखना इस बात का। हम सब लोग इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, मेरे बच्चों को मैंने इतना प्यार दिया है वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा आप बोलते हैं खाली। मेरा इकलौता बेटा है, मैंने पूरा ज़िंदगी मेरा खून पसीना एक करके उसको बड़ा किया है, लेकिन जैसे उसकी बहू आती है सब गणित बदल जाता है, हाँ सब प्रेम माया मोह जो है सब खत्म हो जाता है। और मैंने अपनी कानों से सुना है, एक बुढ़े बूढ़ा आदमी जो बहुत बुजुर्ग आदमी है जिसने अपने बच्चों की देखभाल की है, बड़ा किया है उनको, वो भी आश्रम में रह रहे हैं, बीमार पड़े हुए हैं, उसका बच्चा उसको उधर जयपुर से मिलने को आया है, और डॉक्टर से उनके सामने मेरे सामने पूछ रहा है कितना महीना जिएंगे ये, क्या मुझे रहना पड़ेगा इधर कि मैं जाके आ सकता हूँ, मेरा एक बिजनेस का काम है वो करके आ सकता हूँ कि रहना ही पड़ेगा, कि कितना टाइम है उनके पास। और वो पेशेंट भी सुन रहे हैं कि मेरा इकलौता प्रेम करने वाला जो बेटा है वो पूछ रहा है कि मैं कितने साल जीऊँगा, कितना महीने जीऊँगा। और हमको लगता है नहीं नहीं इन्होंने इनको प्रेम नहीं दिया होगा, देखभाल नहीं की होगी, इसलिए ऐसा होगा। ऐसा नहीं है सर और मैडम, ध्यान रखना इस बात का। हर एक व्यक्ति जो है अपने ही स्वार्थ में और अपने ही भोग में लिप्त है, इसलिए हमको इसी जन्म में जब समय है अपने कर्तव्य को करते करते भगवान का ध्यान और भगवान के शरण लेनी चाहिए। जब तक दिमाग सही है, बुद्धि जगह पर है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है, भोजन भी मिल रहा है, घर सर के ऊपर छत भी है, थोड़ा वस्त्र पर वस्त्र मिल रहे हैं पहनने के लिए, उस तथाकथित अच्छी अवस्था में भगवान का नाम लेकर हमको शरण लेना चाहिए। आगे फिर बच्चे देखेंगे नहीं देखेंगे, पैसा होगा नहीं होगा, हमको डायबिटीज होगा कैंसर होगा, हमको पता नहीं है, लेकिन आज हम भगवान की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि जो बोलता है कि मैं कल लूँगा, जैसे कैलाश बोल रहा था कि मैं थोड़ा देर के बाद में दूंगा, वो उस पर कभी भी नहीं लिया। इसलिए अगर करना है तो जो आज करने वाला है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि आज किया मतलब कल भी करेगा, लेकिन जो आज का नहीं हम कल करेंगे तो वो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कल कभी भी नहीं आता है। हमारे पास केवल जीवन में क्या है, आज है। तो जब नारद मुनि ने कृपा करके कैलाश को अपने ही बेटों के द्वारा डंडे पिटवाए, तब उसको समझ में आया कि बच्चों को मुझ पर बिल्कुल प्रेम नहीं है, जानते भी नहीं कि मैं सांप बनकर यहाँ पर रक्षा कर रहा हूँ। जिनके मुँह के वजह से वो सांप बनकर आया हुआ है और रक्षा कर रहा है, उनको पता भी नहीं है कि कौन है ये, तो उनके लिए कैलाश तो दो पीढ़ी पहले गुजर गए। तब वो सांप ने भी नारद मुनि का शरण ग्रहण कर लिया और अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो हमको ये गति प्राप्त नहीं कर ली है कि अपने घर के अंदर कुत्ता बनेंगे, फिर अपने घर में चिपकली बनेंगे, अपने घर में सांप बनेंगे, अपने घर में जन्म लेंगे, घर के मोह से और घर के आसक्ति से और प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की वजह से, इस शरीर के अटैचमेंट की वजह से इसको भोग देना है, इसको संतुष्ट करना है। हमको जब हमारे पास समय है उस समय के भी हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए और वही शरण हमको मृत्यु के समय काम आएगी। क्योंकि जिसने भगवान का शरण लिया है वो मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद में दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता, उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। और यहाँ पर दोबारा क्यों नहीं आना चाहिए, बोला अच्छा जिंदगी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, सब कुछ बढ़िया ही मिल रहा है, इधर मुंबई में क्या नहीं मिलता है, तो क्या खराबी है मनुष्य बनने में वापस यहाँ पर। नहीं, बुढ़ापा जब आएगा, जब बीमारी आएगी तो दुख होगा ना कि नहीं होगा, जब तक बीमारी नहीं तब तक अच्छा लगता है, लेकिन किसको कब बीमारी होगी उसका क्या कौन बोल सकता है, एनी टाइम बीमारी हो सकती है। हाँ, हमारे अभी एक अच्छे मित्र हैं, बहुत धनवान है वो, उनका बड़ा बिजनेस है उनका, तो रहते हैं कहाँ, मरीन ड्राइव में, उनका बड़ा आलीशान घर है, उनका कई करोड़ों का होगा वो, पता नहीं कितने करोड़ों का, पता नहीं है उसका, लेकिन बहुत पॉश एरिया में रहते हैं। वैसे ही रोड उसके इतने अच्छे, समुद्र किनारा है मरीन ड्राइव के पास, लेकिन उनकी फैक्ट्री किधर है, किधर एक गाँव में है, किधर थाना के आगे, तो फैक्ट्री में गए थे वो, उधर उनको सांप काटा सांप काटे वो अभी लास्ट वीक में भक्ति विधान में एडमिट हो गए थे। अभी सांप काटा तो उनको पता नहीं विषैला सांप था कि बिना विष का था, इतना टेंशन में आए थे। अभी अभी शादी होके अभी एक सुंदर सी बालिका को जन्म दिया था उन्होंने, इतना टेंशन में थे, डॉक्टर संख्या ने सब उनको अच्छी तरह से हेल्प किया, दवाई दिया, ठीक कर दिया उनको। लेकिन हमारे गुरुजी बता रहे थे कि देखो आपको लगता होगा मरीन ड्राइव में रहते हैं वहाँ सांप वाप कोई होता नहीं, हमारे घर में कॉकरोच भी नहीं है, सांप कहाँ से आएगा, लेकिन अगर आपको सांप काटना होगा तो आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर सांप रहेगा, वहाँ सांप आपको काटेगा। कर्म की भोग जो है कोई डाल नहीं सकता है। आप पिकनिक करने के लिए गाँव जाएंगे और गाँव पर जाकर सांप काटेगा आपको, बिच्छू काटेगा, नहीं तो हमने आज तक जिंदगी में बिच्छू देखा नहीं कभी भी, लेकिन अगर हमारे नसीब में बिच्छू काटने का भाग्य रहेगा या दुर्भाग्य रहेगा तो हम जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए गांव में, जंगल में कहीं, हाँ, नैसर्गिक प्राकृतिक हवा खाने के लिए, वहाँ बिच्छू का दर्शन भी होगा और बिच्छू काटेगा भी, हॉस्पिटल में भर्ती भी हो जाएंगे गांव में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एकदम गंदे, वहाँ पर नर्स हमको सुई लगाएगी बिना गर्म किए हुए। ये सब होता है, बड़े से बड़ा आदमी भी गलत जगह पर अगर फंस गया किधर तो भी गड़बड़ में, तो सब उसको सहन करना पड़ता है, जो एक भिखारी को भी नसीब नहीं होगा उतना गंदगी सहन करना पड़ता है उसको। समय समय की बात है ना, इस समय पे आप नेपाल में हो तो क्या कर सकते हो, बॉम्बे में बड़े बड़े अस्पताल है, हमारे पास बहुत कांटेक्ट है, लेकिन एक्सीडेंट हो गया नेपाल में तो वहाँ से कहाँ मैं बॉम्बे आ जाऊँगा, वहीं पर भर्ती हो जाएगा ना दवाखाने में। तो कभी कभी रुपया होने से भी लाभ नहीं होता है, आपको सुविधा ही नहीं मिलती, वो क्या फायदा रुपया होने से, भाग्य होना चाहिए। और सबसे बड़ा भाग्य क्या है, सबसे बड़ा भाग्य रुपया नहीं है, सबसे बड़ा भाग्य जो है वो सौंदर्य नहीं है कि हम जवान हैं, सुंदर हैं, हमारे लंबे बाल हैं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं। और सबसे बड़ा भाग्य जो है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं है। सबसे बड़ा भाग्य है कि हम भगवान का नाम ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा भाग्य है। गरीब से गरीब भी होगा वो आदमी और भगवान का नाम लेगा, तो अमीर से अमीर आदमी से भी भाग्यवान है वो, क्योंकि वो भगवान का नाम जो लिया है उसका जो लाभ है वो उसके साथ लेकर जाएगा। और अमीर से अमीर आदमी जो है उसका धन का एक फूटी कौड़ी भी साथ में लेके नहीं जा सकता। सुंदर शरीर रहेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, एक एक्सीडेंट हो जाएगा, मुंह पे गिरेगा, यहाँ टाके गिरेंगे, सब सौंदर्य समाप्त हो जाएगा आपका। हाँ, पता है आपको, ये जो हीरोइन लोग हैं करोड़ों का इंश्योरेंस निकालते हैं अपने चेहरे के ऊपर, एक नाक के ऊपर, और सिक्योरिटी कितना रहता है उनका, कहीं फिसल के गिर न जाए ऐसा भी सिक्योरिटी रहता है उनका, उसका भी चार्ज लेते हैं उनसे। क्योंकि अगर हीरोइन फिसल गई और मुंह पर गिर गई और कट हो गया मुंह पे, तो कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करेगा तो डॉक्टर तो दिखेगा ना, सौंदर्य समाप्त हो गया आपका।